सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
जीत गए कोरोना से, कोरोना की जंग से जीते हुए लोगों से एक सकारात्मक बातचीत। प्रस्तुति सुमेधा अग्रश्री।
नमस्ते मित्रों, हम फिर हाजिर हैं हमारी ये सीरीज जीत गए कोरोना से लेकर। दोस्तों, किसी बीमारी में बहुत असर करती है दवा, बहुत असर करती है दुआ, और बहुत ज्यादा असर करता है हमारा खुश रहने का मादा, हमारी हंसने हंसाने की एबिलिटी। तो आज हमारे साथ जो मित्र हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये जाना पहचाना होगा, क्योंकि हिंदी कवि मंच के ये बहुत परिचित, बहुत सुपरिचित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। हमारे साथ हैं मंजीत जी। मंजीत सिंह जी, बहुत स्वागत आपका, और आपको बहुत सारे लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा प्लीज।
देखिए, अपने बारे में बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं, फिर आप किस लिए बैठे हैं बताइए मेरे को। ये तो आप बताइए ना, मैंने क्या बताना है, है?
जी, मैंने तो शुरू में ही आपकी तारीफों के लिए कसीदे पढ़ दिए कि ये बहुत जाना पहचाना सा चेहरा है, और आप इनकी हंसी से थोड़ा और पहचान लेंगे। आपको याद आ जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा आपने इनको।
अब ऐसा है ना, कह रहे कि मैं अपना परिचय दूं तो पंडित अपने फेरे थोड़ी खुद करवाता होता है।
देखिए, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम जिस शख्स के साथ बैठे हैं वो कितने जिंदा दिल और खुश रहने वाले इंसान है। पर ये जो स्टेज है, हम इनसे ये तो गुजारिश नहीं कर सकते कि कविताएं सुनाइए, लेकिन हम इनसे एक अच्छी बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों मंजीत सिंह जी भी पॉजिटिव हुए थे, कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के साथ उससे लड़कर बाहर आ गए हैं। तो मंजीत जी, हम उसी पर अपना फोकस रखते हैं कि हंसते हंसाते ही आपने कोरोना को फाइट किया होगा।
नहीं, ऐसा इसमें दुखी होने की तो कोई बात है नहीं। बुखार आएगा तो आदमी जाहिर तौर पे उस समय तो नहीं हंसेगा, है ना, लेकिन ये कि मुकाबला करने की उसमें हिम्मत आदमी को रखनी चाहिए, और रखनी होती है तभी वो उससे पार पा सकते। भाई, अगर आप पूरी तरह सजग हैं और अपना, देखिए एक बात, सबसे बड़ी मुख्य बात यही है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसने मरना है एक दिन, ये तो तय है, ठीक है ना।
हाँ, हाँ।
अब वो जो तिथि है वो आपने नहीं लिखी हुई, ठीक है ना, वो जिसने लिखी है वो अपने आप बुला लेगा उस समय, तो इसलिए पीछे में परेशान होने की क्या जरूरत है। आप जो है अपना वो सामान अपना बंधा रहना चाहिए, और ये पता है कि किसी बीमारी में किसी में दम नहीं है कि हमें बुला सके, बुलाएगा वही जिसने भेजा, उसकी चिंता की बात नहीं करनी।
जी मंजीत जी, बहुत बहुत लोग ये कह रहे हैं, ये सच भी है कि आप दवाओं से जितना ठीक होते हैं उतना आपका विल पावर भी काम करता है, आपको ठीक होने की इच्छा रखनी होगी कि हाँ मुझे ठीक होना है। आपको क्या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, या आइसोलेशन में आकर घर पर ही आप ठीक हो गए?
ऐसा है जी, मैं आइसोलेशन में था लेकिन निरंतर बुखार नहीं उतर रहा था, तो मेरे मित्र है डॉक्टर राकेश अग्रवाल यहीं फरीदाबाद में, मैं उनसे टच में था, वो लगातार दिन में 4 बार मेरा जो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन लेवल है वो सब चेक कर रहे थे। तो जब वो 10 दिन हो गए तो उन्होंने कहा भाई ये अब जो है स्थिति, बुखार नहीं उतर रहा है तो सिटी स्कैन कराना जरूरी। मैंने सिटी स्कैन करवा लिया। अच्छा, वो एक उन्होंने तो 2 दिन पहले कहा था, तो मैं एक्चुअली प्रोग्राम थे वहां दुबई का, ऑनलाइन प्रोग्राम था, और मैं दुबई 21 बार गया हूँ कवि सम्मेलन में, तो उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सकता था, वहां जो लोग थे और उनके आग्रह को टालना मतलब संभव नहीं था, तो मैंने उनकी हाँ कर दिया था। तो मैंने कहा चलो भाई, अच्छा हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मैंने वहां कौन से हल चराने थे लंबे चौड़े, मैं उस दिन पहले करा था सिटी स्कैन तो भी ठीक था, लेकिन उन्होंने कोई दबाव नहीं दिया, तो मैं भी सहज रूप में मैंने कहा कल करा लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो कराया तो 11 पॉइंट आए, तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि वे एक हॉस्पिटल है तो वहां दिखाओ, ओपीडी में उन्होंने फोन कर दिया, मैं गया, फिर वो रिपोर्ट जब आई पूरी प्रॉपर तो उन्होंने कहा देखो ऐसा घर पे भी ठीक हो सकते हो लेकिन बेहतर है दाखिल हो जाओ, स्टीरॉइड वगैरह चलेंगे तो प्रॉपर उसमें रहें, तो मैं वहां दाखिल हो गया। मैं दाखिल हो गया तो वो 1.5 दिन बाद मेरा बुखार उतर गया और फिर मैं ठीक हो गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी ना मेरा कभी पूरी सारी यात्रा के दौरान, ना तो मेरा कभी ऑक्सीजन का लेवल कम आया, ना मुझे कोई खांसी आई, ना कुछ हुआ, सब बस बुखार नहीं उतर रहा था।
तो वो इसमें दो चीज हम पूछना चाहेंगे। पहला ये कि ये तो तत्परता आपने दिखाई कि जब लगा कि घर पर थोड़ी दिक्कत होगी, हॉस्पिटल जाना ज्यादा बेहतर है, तो आपने हॉस्पिटल चूज किया। हम ये जानना चाहेंगे जब हम घर पर रहते तो हम इतना एक प्रॉपर अपनी दिनचर्या फॉलो कर पाते हैं, हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपनी डाइट ठीक रखते हैं, और हंसते हंसाने का आपका काम ही है, आप बाय नेचर भी वैसे हैं, तो घर पे एक हंसी खुशी का माहौल मिल जाता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बिल्कुल अलग एटमोसफियर होता है।
ये आपको मैं करेक्ट कर दूं इस मामले में कि ना तो कोई बुखार के अंदर जब तबीयत ठीक होती ना तो योग करना चाहिए और ना कोई शरीर अलाउ करता है और ना आदमी का मन करता है। जो कोई ये कह रहा है कि मैं योग करता था वो नाटक कर रहा है, फिर उसे वो कोरोना जो है ना वो सिर्फ छू भर के चला गया। कोरोना जिसे हुआ है ना, कोविड हुआ है, तो वो ऐसी मतलब एक तो ये होता है कि आदमी को पता नहीं लगता कि उसे कोविड हुआ है, तो वो बात अलग है। लेकिन जिसको अगर मॉडरेट हुआ है, हल्का हुआ है, तो वो निश्चित रूप से कहीं सुध नहीं रहती कि आपने कोई प्राणायाम करना है, कोई अनुलोम विलोम करना है, ये फालतू की बातें हैं। और कोई कहता हो तो नाटकबाजी है फालतू का, वो अपने आप को जरा महान बनाने के प्रयास भर है, चक्कर ही नहीं होता।
आदमी
आदमी बिस्तर पे होता है, आदमी को ये नहीं पता होता कि उसका नहाने का मन नहीं करता। आप बताओ, मैं 15 दिन बाद नहाया था, 15वें दिन मेरा मन हुआ नहाने का, तो मैं मतलब तब गर्म पानी करके मैंने नहाया। तो ये अब जैसे मेरे एक मित्र को हुआ, तो वो भी हाँ। उसने कहा यार मैं नहा लूं, मैं कब तेरा मन कर रहा तो नहा ले भाई, ठीक है ना। तो ये जो फालतू की बातें, ये तो बाद की बातें हैं, ये पोस्ट कोविड की बातें हैं, प्राणायाम और इसके व्यायाम की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। घर में आप पड़े हुए हो, अंदर हो, आइसोलेशन में हो, और आपका जो खाना है वो एक टिपाई पे आएगा, आप उसको सरका के अंदर चले जाओगे। आप कह दोगे बाहर, वो आप आइसोलेशन में हो, और हॉस्पिटल से जो लोग डरते हैं वो कुछ नहीं है। मैं हाँ, हॉस्पिटल में ये है, जैसे हमारे प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है ना, स्टेटस सिंबल हो जाता है। मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो उसे पर्सनल रूम में नहीं रहना चाहिए।
अच्छा, डॉक्टर की अटेंशन थोड़ी कम रहेगी।
नहीं, अटेंशन कम नहीं रहे, आदमी वहाँ अकेला है, पहले बीमार है, फिर वो टीवी खोलेगा तो वहाँ वो ही समाचार आ रहे हैं, फिर वो अकेलेपन में है। तो ये कोरोना तो उनको, जिनको हो गया है वो तो फैलाने से रहे, वहाँ 6-7 जहाँ बेड है, तो वो हर आदमी जो है वहाँ है और उसे जो है कोविड हुआ है। तो वो है क्या कि वहाँ कोई आदमी है, तो जैसे मैं ही था वहाँ, तो एक सज्जन जो थे वो मेरे ही, उन्होंने यूट्यूब में कहीं वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप वही हो? मैंने कहा हूँ। अब ऐसे एक महिला थी, बुजुर्ग थी, तो वो मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो नर्स नहीं आई, तो मैं जाके वहां कह के आया भी जाके उनको पूछो। फिर मैंने ये महसूस किया कि कईयों की जैसे कंप्लेनिंग नेचर होती है ना, तो अटेंशन सीकर है कि उसने कोई ना कोई, मेरा तो पानी गिर गया, मेरे को तो ये हो गया, तो हर आधे घंटे बाद उन्होंने तो मतलब वो करना ही है। शुरू शुरू में हम भाई को हुए, हमने घंटी बजाई, नर्स आ गई, उसको बताया अभी इसको ये चाहिए, फिर बताया ये चाहिए, मेरे को सांस नहीं आ रहा, तो मैं उठ के चला गया कहने के लिए कि मैं उसको सांस नहीं आ रहा। लेकिन फिर महसूस किया कि भाई ये तो अटेंशन इन्होंने तो सीख करनी है अपनी। तो मेरे हिसाब से तो जो ये है ना, ये प्रतिष्ठा छोड़ के आपको मतलब आप हॉस्पिटल में अगर जा रहे हैं तो उसमें जहां वो 5-7 का वार्ड होता है वहां रहना चाहिए। तो कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने जब किसी ने आह भरी, किसी ने हा की, तो आपका मन लगा हुआ है यहाँ वहां देखने में, कहीं खिड़की के बाहर देख रहे हो आप। अगर आप अकेले कमरे में हो तो आप मतलब नरक में हो मेरे हिसाब से। तो कम से कम वो गतिविधियां तो चल रही है ना कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बार आपको खाना दे रहा है आदमी को, दूसरे को दे रहा है, वो कह रहा है नमक कम है, तीसरा कह रहा है जी दाल चाहिए मेरे को, तो वो एक मतलब एक स्वाभाविक सा वातावरण जो है बना हुआ है।
जी,
घर के अंदर के आप कमरे में ही हो, वहां से आपको कोई चीज चाहिए तो आप मांग लोगे, तो ऐसा कुछ वहां भी दिक्कत नहीं है, वहां भी आपको मिल जाता है, क्योंकि उनको तो पैसे मिल रहे हैं भाई। आप किसी सरकारी खैराती अस्पताल में हो तब तो समस्या है, लेकिन जब आप मेडिक्लेम और सब, मैं तो गवर्नमेंट का अधिकारी रहा हूं, तो हमारे को तो वहां से भी फिल हो सकते थे, हमने मेडिक्लेम भी करा रखा था। तो फिर उस स्थिति में आपको मतलब ये स्टेटस सिंबल छोड़ते हुए, क्योंकि आपके साथ रहना तो किसी है नहीं, आप कोविड वार्ड में है तो आप अकेले कमरे में आप ही, आपको नर्स और वो आएंगे देखने के लिए और कोई नहीं होगा। उसमें बेहतर ये होता है कि आप वहां रहें, तो वो कुछ इधर की घटनाक्रम सारा कुछ, कोई भी कोई किसी को देखने आया, कोई लगा कुछ किया, तो वो मन जो है वहाँ उचित रहता है।
ये एक थोड़ा सा नया परिदृश्य आपने हॉस्पिटल का रखा, वाकई एक थोड़ा नया व्यू है, क्योंकि अभी तक हम अलग तरह से सुनते आ रहे थे। तो यहाँ मंजीत जी, जब आप में वो थोड़ा सा मादा है, जीवटता है, तो आपने उसको बहुत पॉजिटिव लिया। जो बहुत नॉर्मल सा इंसान है, जब बीमार होता है तो उसको लगता है ना कि मुझे चार लोग पूछें, मुझे तकलीफ है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या किया था आपने, या बाकी लोगों को क्या
करना चाहिए? मैंने तो जब मैं ठीक हो गया और मैंने पोस्ट कोविड की स्थितियां देखी, तब मैंने फेसबुक पे डाला कि जो मेरे खुद के अनुभव थे, मतलब दूसरों के नहीं, मैं और उनको मैंने औरों से शेयर भी किया। मैं जिस समय दाखिल हुआ तो मैंने किसी को नहीं कहा भाई मैं जो है मेरे को हो गया कोरोना, क्योंकि मुझे पता था मुझे किससे हुआ है। और वो भी बड़ी मजे वाली बात है, वो एक कवि सम्मेलन था आगरा में, मैंने उसमें बताई उनको। देखिए मेरे साथ ये रहा है कि मेरी शादी के बाद में मैंने कभी भी, जब भी ससुराल गया हूँ तो मैंने कोई नेक वगैरह नहीं लिया, तो ये रहा कि अपनी बेटी को जो उन्होंने दिया वो दिया, मैंने कभी कोई नेक नहीं लिया। तो मेरे साले से लोगों ने कहा होगा कि भाई तूने अपने जीजा को कुछ दिया नहीं आज तक, तो वो बोला मैं ऐसी चीज दूंगा जीवन भर याद रखेगा। तो मेरे साले ने मुझे कोरोना दिया। हाँ, तो मेरे साले ने दिया, बोला साला मेरा जीजा याद रखेगा कि साले ने कुछ दिया था। तो मुझे पता था कि कहाँ मिला है, तो मैं औरों को फालतू में बताऊं कि जी अपने आप को आइसोलेट कहाँ का आइसोलेट कर ले, मैं उससे मिलके आया हूँ, 3 घंटे उसके पास बैठा था, उसको था, उसने मुझे बताया नहीं कि उसे कोई शिकायत है, जबरदस्ती आगे चिपका रहा मेरे साथ। तो वो
तुमको भी पता नहीं होगा,
नहीं वो उसको सामान्य बुखार मान के चल रहा होगा ना बंदा, ये भी तो है ना, सीजनल बुखार मान के चल रहा होगा, नवंबर की बात थी मेरे साथ। तो तब जो है मैं, मेरे को तो पता था कि किसने दिया, तो मैंने तो आगे सीधा आ गया और चेक करा लिया अगले दिन जाके, वो निकल आया पॉजिटिव, उसके साथ साथ सारी चीजें।
जी अब आप ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हैं और वापस अपनी एक्टिविटी में हैं, तो मंजीत जी किस तरह से आप दूसरों के लिए मददगार हो सकते हैं?
देखिए एक तो ये है कि जिसका भी मुझे पता लगता है कि उसे कोविड हुआ है, तो मैं उससे लगातार बातचीत करता हूँ हर रोज, ऐसे आदमियों से जो कोरोना से आइसोलेशन में है और बातचीत करने की स्थिति में है, तो मैं उनसे लगातार टच में रहता हूँ, और जैसा सहज भाव में रहते हैं तो उनको सहजता के साथ ही रखते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। दूसरा जो ठीक हो गए हैं लोग, उनके लिए बहुत जरूरी है, और मैं आपके इस पटल के माध्यम से सबको बताना भी ये चाहता हूँ कि है क्या मामला, कि ये बड़ी विचित्र सी बीमारी है और नई आई है, तो इसके नए नए रंग जो है वो भाई, कोई पुरानी बीमारियां अपनी रेपुटेशन के साथ जी रही हैं, इतने सालों से वो आई हैं, तो उनके अपने अपने ढंग हैं, रंग हैं, लेकिन ये नई बीमारी है, इसके नए नए रंग ढंग लोगों को सामने नजर आते हैं। एक तो इसमें सबसे खतरनाक चीज ये है कि आदमी जब ठीक हो जाता है तो कुछ फेसेस ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे चरण आते हैं कि इसमें एक बार तो आदमी को 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से भी फिट हूँ, मैं बहुत भी जो काम एक्सरसाइज जितनी है वो कर सकता हूँ, और वो उस दौरान में ज्यादा मेहनत कर लेता है, तो उसे बाद में पता लगता है कि मतलब एक टाइम ऐसा लगता है कि भी बिल्कुल जान ही नहीं है। ये फेसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उसमें सलाह यही है कि जब भी किसी को लगे कि मैं बहुत ठीक हूं, तो उसे अतिरिक्त प्रयास नहीं करना चाहिए, मतलब पहले 1 महीने के तक तो उसे टहलना मात्र चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, टहलना चाहिए, उसे लगे कि मैं ठीक हूं तो उसको वेंचर नहीं करना चाहिए ज्यादा। ये उनकी है जो मतलब जिनके बिल्कुल जो अभी थोड़े दिन 4-5 दिन रह के निकल गया, स्वाद चला गया, 4-5 दिन में ठीक हो गया, उनके लिए नहीं कह रहा मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं या जिनको थोड़ा सा फालतू टाइम जिनको लिया, बुखार 7-8 दिन तक रहा है, उनके लिए जो 2-4 दिन में निकल गए वो उनके लिए नहीं कह रहा, जो 6-7 दिन लगातार जिनको बुखार रहा है, उसके बाद जब वो ठीक होंगे तो उनके पीरियड्स चलेंगे कि जिसमें वो 1-2 महीने तक ऐसा चलता रहेगा कि कभी वो लगेगा ठीक हो गए बहुत, और वो पूरा दिन खड़े रहेंगे पैरों पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगले ही दिन उन्हें लगेगा कि उनको तो प्राण नहीं, और वो बिस्तर पे पड़े रहेंगे, उठ भी नहीं पाएंगे, और टॉयलेट जाना होगा तब भी वो हिम्मत करके, मेहनत करके जो है वो उनको वो रहेगा ऐसा। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये अलग जो है मामले, ठीक है ना, तो ये
जरूरी,
तो ये उसको कम से कम, शुरुआत कम से कम करें, ज्यादा मेहनत शुरू में ना करें, शुरू में सिर्फ यही है
कि जितना जरूरी है कोविड के दौरान दवाएं खाना और बाकी प्रिकॉशन लेना, उतना ही जरूरी है कि अगले एक डेढ़ महीने तक आप अपनी उतनी ही केयर करें जितनी हॉस्पिटलाइज होते समय की थी।
भाई समझ लीजिए, आप यूँ समझ लीजिए कि आपको 50 तक के पहाड़े याद है, लेकिन आप जब कोविड से निकल के आते हैं तो आप गिनती से शुरू करिए, 1 से 100 तक की गिनती आपने पहले पढ़ी, फिर 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, ऐसे स्टेजेस में ऊपर अपना अपने जैसे जैसे शरीर रिस्पॉन्ड करे वैसे वैसे धीरे धीरे करें, क्योंकि आपको एक बार लगेगा कि मेरे को तो 25 का पहाड़ा आता है, फिर बाद में अगले दिन पता गिनती नहीं आती, तो उस चक्कर में ना रहे। एक तो ये सबसे बड़ी बात, दूसरा ये मेरा अनुभव रहा कि जो ये विटामिन और ये और वो और चीजें सारी अपने साथ है, जैसे मैं भी ये रखता रहा, आजकल मेरे मित्रों को मैं यही बताता हूँ कि भाई रात को 6-7 बादाम भिगो के रखो, एक जो है अखरोट भिगो के रखो, वो अपना खाओ, और मुनक्का, चूंकि किसी भी बुखार या बीमारी से हम उठते हैं भारतीय, तो हमारी परंपराओं में आयुर्वेद में है कि हमें मुनक्के का इस्तेमाल करना चाहिए, तो गर्मी के दिन है इसलिए मुनक्के को भिगो के रखें 5-7-8 मुनक्का, और सुबह उसका पानी पिए और मुनक्का खा ले, तो वो क्या है जो जांघों के अंदर दर्द होता है ये इसके बाद में पैदा, वो खत्म करने में मदद मिलती है। और तीसरी स्थिति है, कुछ लोगों को तो दस्तवस्त की पोजिशन आ जाती है और कुछ लोगों को कब्ज हो जाती है, जैसे कि मुझे हुई, तो उसके लिए क्या रखा कि जो ये हरड़ का मुरब्बा होता है, तो आप हरड़ का मुरब्बा लें और रात को 1 या 2 पीस दूध के साथ जो है वो खाएं, और दिन में यूनियन जैम की जो टेबलेट है वो ले लें, तो उससे क्या है कि आपकी कब्ज और गैस वैस जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, और वो कोई ऐसा कोई एलोपैथिक मटेरियल भी नहीं रहेगा। और एक चीज जो मेरे अनुभव की है, अलग अपने आप के अनुभव की है, जिसमें भाई मेरा खुद का अनुभव, अगर संयोग से प्राप्त किया अनुभव है वो, क्योंकि मेरी पत्नी दिल्ली की है तो वो मक्की का आटा भी खाया करती थी, मक्की की रोटी खाते हैं जैसे कि हमारे यहाँ, तो मैं हरियाणा का हूँ नारनौल का, बेसिकली मैं फरीदाबाद में 21 साल से रह रहा हूँ, तो मैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर में जहां से बाबा रामदेव है मैं उस एरिए का हूँ, तो हम वहां बाजरा खाया करते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, तो मैं वो मक्का लेने गया तो मैं संयोग से वहां बाजरा भी उठा लिया, उसकी रोटी बनवा के खाई, तो वो मुझे अलग ताकत उसमें महसूस हुई, और फिर मैंने जो है मतलब उसमें ये सारी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट है, विटामिन, जिनमें इनमें इतनी ताकत नहीं होगी जितनी उस बाजरे के वो रोटी में थी, तो वो फिर मैंने उसको भी शुरू किया इस्तेमाल करना। फिर ये हुआ कि मेरे हम एक IAS अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे थे हरियाणा में, तो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भी रोटी जो है ना इसमें तो ज्यादा घी डालना पड़ेगा अभी, तो इसके बिना ये सीमेंट की तरह लगती है, तो तुम चिल्ला बना के खाया करो। मैंने कहा जी कैसे? मैंने कहा नमक मिर्च मसाला डाल लो, जो डालना है गाजर कस लो या मूली कस लो या पनीर डाल लो, जो भी तुम्हें प्याज पसंद है जो है वो बना के उसका चिल्ला खाओ और वो स्वाददार होगा। ये तो सर्दियों की चीज थी, नवंबर से फरवरी, तो मैंने जब फेसबुक पे डाला तो एक कोई बच्ची होगी, उसने लड़की ने लिखा कि भाई मैं तो सर अब भी जो है हमारे यहाँ खाते हैं हम बाजरा, लेकिन हम खाते हैं दही के साथ दिन में, आप भी ट्राई करें। तो अब ये लॉकडाउन दोबारा शुरू हो गया तो मैंने भी वरना ट्राई करना था, जिसको अगर सूट करता है ये, अगर किसी को बाजरा सूट करता है तो उससे बेहतर ताकतवर कोई चीज नहीं है, ये गारंटेड चीज है, कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये मेरा खुद का प्राप्त किया अनुभव है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बल्कि मैंने तो फैसला ही किया कि जब भी अब नवंबर का सीजन शुरू होगा तो मैं एक टाइम चाहे नाश्ते में चाहे लंच में जो है बाजरा जरूर खाऊंगा।
देखिए आपके अनुभव से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, हम बातचीत भी इसीलिए कर रहे हैं कि पर्सनल उस व्यक्ति के अनुभव जान सके, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है। जैसे आपने हॉस्पिटल के विषय में अलग बताया, हमने कल किसी से बात की तो उन्होंने अलग ही एक परिदृश्य बताया था। अच्छा मंजीत जी,
वो अलग कमरे में होंगे ना, वो एक कमरे में अलग रह गए होंगे ना, वो एक मैंने मना कर दिया था एक कमरे में नहीं रहूंगा, वो एक कमरे में अलग कमरा लेके रहे होंगे ना, इसलिए दिक्कत आई होगी ज्यादा।
हमने 15 मिनट के समय इसलिए रखा था ताकि बहुत प्रोग्राम बहुत लेंथी ना होने पाए, बीमारी के विषय में ज्यादा देर बात करना कोई पसंद नहीं करता,
लेकिन बीमारी क्या है, ऐसा है सुमेधा जी, बीमारी क्या है, ये तो एक वो पड़ी हुई बिजली है, तो अब वो आप मुकाबला नहीं करोगे भाई। देखो एक बात है, आपका पैर टूट गया, अब उस पैर को जो है दिखाते हैं रोगी जी टूट गया टूट गया टूट गया, तो फिर और टूटता रहेगा। तो आप टूट गया मतलब वो फिर आप ममता बनर्जी की तरह हो जाओगे जो पता नहीं कितने पूरे डेढ़ महीने तक पैर टूटा ही रह जाएगा। ऐसा है, टूट गया प्लस्तर चढ़ गया बात ठीक है, वो उतर गया ठीक है, अब थोड़ा उसको हिला लेंगे चलेगा बढ़िया है। तो देश पे विपदा है टूटी है, अब उसमें ये कि सावधानी बरती जाए और आप वैक्सीनेशन करवाएं सभी लोग जो है, और इससे निजात मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समय है। और भाई देखो जिसका वो तुलसीदास जी वाली बात है कि जीवन मरण हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो जो अगर मान लो किसी की विदाई लिखी है और हमें अपने जीते जी उसको विदा करना है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन सावधानी बरत सकते हैं कि हमारा नाम नहीं लिखा हुआ हम जबरदस्ती वहां जो है अपने को जो एंट्री कराएं कि हमने तो बुलाओ 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 चित्रगुप्त जी हम तो आपके चेले हैं यहाँ पड़े हुए बुलाओ, तो फिर बात अलग।
जी दरअसल बातचीत इतनी इतनी सहज ढंग से हुई इसलिए हमें समय का पता नहीं चला, और बहुत लाभदायक बातें आपने बताई अपने अनुभव से जो बताई। तो मंजीत जी आपको शुभकामनाएं कि अभी ये दोबारा से सिलसिला शुरू हो मंचों का। बहुत
नहीं, मैंने सोचा आपने कहा दोबारा से सिलसिला शुरू कोरोना का, मैं एक बार हो लिया दोबारा करवा लो।
नहीं,
मंचों से ज्यादा उस गरीब आदमी के लिए जो सड़क पे परेशान है, उस झोपड़ी वाले के लिए उसका कामकाज जो है वो ठीक चले। हम लोग तो अपने अगर अभी हमने अब वो मान लीजिए कोई आदमी है और जब उसके कमाने के दिन थे उसने नहीं कमाया नहीं बचाया तो वो उसकी मूर्खता है, लेकिन जिसने रोज कमाना है रोज खाना है तो उसके लिए चिंतित हमें होना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि अब वो सिर्फ जो है रोटी और नमक ना खाए, वो रोटी के साथ सब्जी भी खाए अचार भी खाए दूध भी उसके बच्चे पिए और सब देश जो है वो पहले जैसा हो और सब आनंद लें सब मस्ती करें।
जी हम बहुत देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं भी, तो बहुत सारे ऐसे नए नए हाथ भी आए हैं जो मदद के लिए एक दूसरे के लिए उठ रहे हैं कि किसी को तकलीफ ना हो। पर खैर अब ना जाने ये सिलसिला कब खत्म हो, पर उम्मीद है कि जल्दी ही खत्म होगा। अब देखिए इस बहाने आप सभी बात
करें। ये जो है ना ये भाई अब ये दो लगे हुए ना 2021 में तो और 2020 में दो थे 2-0-2 ठीक है ना। अब वो जो 22 आ जाएगा ना उसमें 222 हो जाएगा, तो हमारे तो हम तो त्रिमूर्ति के मानने वाले देश के लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव को मानने वाले लोग हैं, तो वो फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये नवंबर दिसंबर तक की है और ये तब की है कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं, और एक ही रास्ता है, और ये जुलाई से वैक्सीनेशन भी आना शुरू हो जाएगा। और फिर जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि ये तो जो है वैक्सीनेशन से ये हो जाता है वो हो जाता है ऐसा कुछ नहीं, मैं उसके बारे में भी बता दूं आपसे कि क्या है कि जैसे मैंने दोनों डोज ले ली है।
अच्छा,
वैक्सीनेशन और हमारे यहाँ कोविशील्ड लग रही थी तो मैंने वो ली, और क्या है कि उसका भी हर एक आदमी को अलग अलग प्रभाव है, कहीं को बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने पहली बार डोज जब ली पहली डोज तो वो कोविड होने के 4 महीने बाद ली, जैसे मतलब 1 मार्च का दिन था तय हुआ 1 मार्च को ही मैंने जाके बोली। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मैं लौटा तो मुझे लगा कि थकान सी हो रही है, मैं सो गया 2 घंटे, फिर मैं शाम को जो है वॉक करने लग गया जैसे मेरा रूटीन था, लेकिन मुझे लगा और थकान ज्यादा हो गई है वॉक करने से, गलत हो गया नहीं करनी चाहिए थी। तो सुबह अगले दिन मुझे बुखार हो गया, वो मैंने 2-3 बार पैरासिटामोल ली, रात तक बुखार रहा वो ज्यादा नहीं था 99-100 के बीच में, फिर वो अगले दिन उतर गया। और बांह में जो है वो सख्ती रही, बांह मेरी सख्त रही, पहले दिन थोड़ा सा दर्द रहा लेकिन सख्त रही, और 7-8 दिन में वो बांह भी नॉर्मल हो गई, ये मेरी जिसमें मैंने लगवाया था। अब मेरी उसमें सलाह मशवरा यही है कि जब आप लगवाएं तो आप 2 दिन के लिए बिल्कुल आराम में रहें, 2 दिन के लिए आपको फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दूसरी बार मैंने इंजेक्शन लगवाया तो मेरी हाथ भी मेरा नॉर्मल रहा, कोई सख्त नहीं हुआ कोई स्टिफ नहीं हुआ, और मैं आराम से आराम मैंने किया। अगले दिन एक बार जैसे हरारत सी होती ना जैसे 98.6-99 हो गया हो, तो ऐसी हरारत थी मैंने चेक भी नहीं किया और वो एक गोली ले ली बस वो ठीक हो गया। तो ये पहली बार में फर्स्ट डोज के समय जो है वो करता है, किसी को बिल्कुल नहीं वो महसूस होता, और कुछ को जो है वो महसूस होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो वो आदमी को लगवाना चाहिए, जो भी वैक्सीन मिल जाए, जो इससे मिल जाए, वो वैक्सीन मिले, ये मिले, स्पुतनिक मिले, जो भी मिले, ये जो है वो आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो ईद की सेवियां हैं, जो जैसी मिल जाए खिला दे, वैसी खा लो, ठीक है, मीठापन तो उसमें हो गई हो गई, तो तय बात है।
अब मंजीत जी, हमको क्लोज करना है ये, क्योंकि काफी समय हो गया, हम आधे घंटे करीब बातचीत कर लिए, तो क्या अंत हम एक ऐसे नोट पर कर सकते हैं जिसके लिए आप जाने पहचाने हैं, परिचित है, चिर परिचित है, क्या इस दौरान कुछ ऐसा लिखा है आपने जो?
मैं आपको सुना देता हूँ, कुछ टुकड़े सुना देता हूँ, ठीक है, समय वो आपके हिसाब से तो दुगना होने को है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। देखिये फर्क क्या हुआ कि कोरोना से पहले क्या स्थितियां थी और कोरोना के बाद में क्या स्थितियां हुई, एक अंतर जब आदमी बाहर घूमते थे और एक ये लॉकडाउन का, उसमें देखें आप, कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी छिड़कती थी, देती मीठी गालियां, क्या कर रहे हो, पानी भी नहीं पीने देती थी हाथ से, पानी हम भर गए क्या। और जब लॉकडाउन लगा तो उसके परिस्थितियां देखिए क्या हुई, कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी झिड़कती थी, देती मीठी गालियां, दाल और सब्जी बनाता अब रोज वही, रोज चमकाता बैठ चम्मच और थालियां, घूंघट नकाब बुरके को जो कोसते थे, घूंघट नकाब बुरके को जो कोसते थे, मास्क पहनो तो बजाते वे ही अब तालियां, मास्क पहनो तो बजाते वे ही अब तालियां, कोविड की औलाद साले कोरोना के बीज पैदा हो गई हैं अब नई नई गालियां, पैदा हो गई हैं अब नई नई गालियां। और अगला मैं सुना था कि मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर जो है वो करने की बात है, तो हमारे देश में देखिए आपदा में कैसे अवसर लोग ढूंढे, आजकल तो दूसरे तरीके से ढूंढ रहे हैं कि नहीं ऑक्सीजन की ब्लैक कर रहे हैं और दवाइयों की ब्लैक हो रही है, लेकिन उस समय की क्या स्थिति है, आपदा के बादल घुमड़ कर आए जब जनता ने अवसर उसमें बना लिया, जनता ने अवसर उसमें बना लिया, लिपस्टिक नेल पॉलिश जो बनाया करते थे प्लांट सैनिटाइजर का उनने लगा लिया, बंद हो गए जब जिम और रेस्तरां, तो बंद हो गए जब जिम और रेस्तरां, तो गलियों में सब्जी का ठेला भी लगा लिया। और क्वारंटाइन प्रेमिका को आप दृश्य देखिए कि प्रेमिका को कोरोना हो गया है, क्वारंटाइन है, और प्रेमी जो है कैसे मिलता उससे, क्वारंटाइन प्रेमिका को पीपी किट पहन के कमरे में उसके ही गले से लगा लिया, कमरे में उसके ही गले से लगा लिया। धन्यवाद,
शुक्रिया मंजीत जी, आपने इतना सारा समय दिया और इतने हल्के फुल्के अंदाज में इतनी गहरी गहरी बातें कह दी, हमको लगा ही नहीं कि हम किसी बीमारी के विषय में बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी हम आपको मंचों पर फिर से देखें, ऑनलाइन तो देख ही रहे हैं कई बार, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।
अच्छा जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार।
जीत गए कोरोना से, कोरोना की जंग से जीते हुए लोगों से एक सकारात्मक बातचीत, प्रस्तुति सुमेधा अग्रश्री।